पेंसिल बनाने वाले व्यक्ति ने अपनी नई नई बनाई हुई एक पेंसिल को उठाया और उससे बात करने लगा जैसे कि वो कोई एक व्यक्ति हो। उस पेंसिल से कहा, इससे पहले कि तुम दुनिया में जाओ मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं, यदि तुम वो करो तो तुम इस संसार की द बेस्ट पेंसिल बन जाओगी। और वो पेंसिल का रचयिता, पेंसिल मेकर उस पेंसिल से कहता है कि तुम अपने जीवन में ये 5 बातें याद रखना हमेशा के लिए। सबसे पहली बात, जब तुम जीवन की यात्रा चालू करोगी तो अपने आप को किसी के हाथ में सौंप देना। सबसे पहली बात वो पेंसिल से कहता है कि तुम अपने आप को किसी के हाथ में सौंप देना। दूसरी, तुम्हें बहुत छीला जाएगा, 30 उठेगी, दर्द होगा, खलिश उठेगी, पीड़ा होगी, पर याद रखना जब जब वो शार्पनिंग, जब जब तुम्हें छीला जाएगा तुम्हारे हाथों से महान कार्य होंगे। इसके लिए दुख ना मनाना। तीसरी बात, लिखना बंद ना करना कभी भी। लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, चलते जाना, चलते जाना, कभी भी ना रुकना। चौथी बात, ये भी याद रखना, अगर लिखते लिखते कुछ गलत तुमने लिख दिया तो उसको मिटाने के लिए रबर रखना, या ये याद रखना कि यह भी गलत लिखा गया तो वो मिटाया भी जा सकता है। और 5वीं बात, निरंतर याद रखना जो असली चीज है वो अंदर है और जो बाहर है वो केवल आवरण है। केवल वस्त्र मात्र है, असली जो चीज है वो कहां है? अंदर। पेंसिल कहती है कि मैं वादा करती हूं कि आपने जो मुझे सिखाया, आपने जो मुझे बताया, वो मैं निरंतर याद रखूंगी। भगवान ने हम आत्माओं को रचा और हमें भी सबसे पहली शिक्षा दी कि तुम अपने आप को किसी के हाथ में दे देना। मुरली है 18 जनवरी की 1985। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को समर्थ भाव का वरदान बाप अर्पित करते हैं, तो रचा उस परमात्मा ने और हमें सौंप दिया एक ऐसे व्यक्ति के हाथ कि जिससे ये तकदीर ऊंच हो गई, महान हो गई। आज की मुरली में बड़ा ही अच्छा एक वाक्य आया है, बाप राइट हैंड बच्चों से क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं। और हमें क्या करना है? जब वो हैंडशेक करे तो हमें क्या करना है? उसके हाथ से सारी शक्तियों को खींच लेना, सारे दिव्य गुणों को खींच लेना, सारे ज्ञान को खींच लेना। वो आता है संगम युग पर और हैंडशेक करता है, हेलो आई एम शिव बाबा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, जैसे जैसे तुमने मुझे खोजा, अब मैं आया हूं तुम्हारी खोज पूरी करने, आकाश का सिंहासन छोड़कर दूर का मैं सा मुसाफिर। तुझे पाके हमने जहां पा लिया, क्योंकि वो चाहता है हम ये गीत गाए, तो आया है। तो सारी दिनचर्या में बीच बीच में अनुभव करना कि वो हमसे हाथ मिला रहा है और उसका हाथ हाथों में है, और जैसे ही उसका हाथ ले लिया दिल को राहत मिल गई। जैसे उस पेंसिल मेकर ने उस पेंसिल को कुछ शिक्षाएं दी और उस पेंसिल ने अंततः कहा कि मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि ये सारी शिक्षाओं को याद रखी। बाबा ने आज के मुरली में बहुत सारी बातें हमको बताई है और फिर कहा प्रतिज्ञा करो, और प्रतिज्ञा को क्या करो? फिर रिवाइज करो। कब? अमृत वेला। उसका हाथ हैंडशेक मेरे हाथ में है। अमेरिका में बहुत एक पुरानी जाति है, शायद वो भारतीय थे, चेरोकी जिनको कहा जाता है। उस आदिवासी जाति में एक नियम है कि जब भी कोई लड़का बड़ा होता है तो उसे एक रात जंगल में बितानी होती है, इससे पहले कि उसे करार दिया जाए ये द मैन है, मर्द है, शक्तिशाली युवक है। अंधेरी रात, जंगल का समय, सारा गांव उसे छोड़ने जाता है। खूंटी है एक, वहां पर उसे बैठकर आंखें बंद कर सारी रात बितानी है। अगर वो ऐसा करे तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सूर्य की किरणें उसके शरीर पर आएगी, सब लोग वहां आएंगे और उसे नया टाइटल दिया जाएगा कि ही इज द मैन। एक युवक ऐसा ही, सब लोग उसे ले जाते हैं और वो उस खूंटी पर बैठते हैं आंखें बंद, रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा, जानवरों की आवाज, पता नहीं शायद कोई मनुष्य ही आक्रमण कर दे, अंधेरी रात, जंगल का समय, जंगल का स्थान, ठंड, अजीबोगरीब आवाजें, डरते रहता है पर आंख नहीं खोलता, आंख बंद करके और रात भर इस तरह बिताकर सुबह जब आंख खोलता है सूर्य की किरणें, नाचती किरणें उसके शरीर पर पड़ती है, तब देखता है एक दूसरी खूंटी है, उसके पिताजी वहीं खड़े बैठे थे रात भर। वो डर रहा था परंतु उसके पिता वहीं थे। और हर व्यक्ति जो इस तरह की परीक्षा पास करता है उसके लिए नियम है कि वहां क्या हुआ था वो किसी को भी नहीं बताना। इसके लिए राज हमेशा गुप्त ही रहा कि जो जो बैठा उसके बाजू में उसका अभिभावक, उसके पिता उसके साथ ही थे रात भर। संसार की अंधेरी रात में जहां कांटों का जंगल, अजीबोगरीब आवाजें, माया के नित नए रूप है और हम आंखें बंद कर कर बैठे हैं, परंतु एक विश्वास रहे कि वो मेरे साथ बैठा है। ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, बाप दादा, ऐसे राइट हैंड बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिन्होंने प्रत्यक्षता की प्रतिज्ञा की है, ऐसे बच्चों को बाप दादा क्या करते हैं? हैंडशेक। तो हमें भी क्या करना है? फिर पक्का पकड़ के रखना है, एनर्जी ट्रांसफरेंस, सारी शक्तियों को खींच लेना है और बार बार पकड़ के रखना है। तो व्यक्तवाणी है 18 तारीख की, जनवरी मास की, 85 की, ओम शांति भवन में चली। लंबी मुरली है, इसको हम रिवाइज करेंगे। मुरली में विदेशियों से मुलाकात, विदाई के समय दादियों से कुछ बातें बाबा ने की और मुरली। तो इस मुरली को हम 18 भागों में डिवाइड करेंगे, 18 पॉइंट्स। कौन किसको देख रहा है? ये दिन कौन सा है? दिन कौन सा है? समर्थ दिवस। दिन कौन सा है? अव्यक्त दिवस। दिन कौन सा है? इस दिन के नाम क्या क्या है? स्मृति दिवस, समर्थ दिवस, अव्यक्त दिवस, शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का दिवस। मुरली को छोड़कर इस दिन का नाम क्या है? संपूर्ण बनने का दिवस, संपन्न बनने का दिवस, कर्मातीत बनने का दिवस और बाप समान बनने का दिवस और सर्वशक्तिया बाप बच्चों को विल करता है इस दिन, ऐसा यह दिवस। ये भी एक चिंतन का विषय है कि इस यज्ञ में इस दिन का क्या महत्व है। और बाबा ने 18 जनवरी का ही दिन चुना, 18 अध्याय गीता के पूर्ण हुए। तो इस मुरली में ऐसी 18 बातें। सबसे पहली, समर्थ बाप समर्थ दिवस पर किसको देख रहा है? समर्थ बच्चों को देख रहा है। मुरली में बाद में समर्थ का वरदान दिया है परंतु शुरुआत में ही है, तुम्हें वरदान नहीं, तुम हो। ये दिन ही समर्थ है, तुम समर्थ हो और बाप तुम्हें समर्थ भाव का वरदान दे रहा है। मुरली में और कहीं बाबा ने कहा है, यदि ऊंच नीच हो जाए, यहां वहां हो जाए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना, क्योंकि मधुबन तुम्हें समर्थ बनाएगा, मधुबन तुम्हें शक्ति भरेगा, मधुबन तुम्हें हिम्मत उल्लास भरेगा। खर्चा नहीं, टिकट नहीं, परमधाम में जाना कठिन है, मधुबन में जाना बहुत आसान। कैसे आना है? मन से आना है। यहां से जाने के बाद हर दिन 24 घंटे में एक बार मन से मधुबन की यात्रा करनी है। करेंगे ये काम सभी? मन से मधुबन की यात्रा करनी है, यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तम पर आ जाना, यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना, यदि बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना, यदि उदास हो जाओ तो बाप से रू रिहान करने बाबा की कुटिया में आ जाना। ये अभ्यास आज ही करना है, यहां से अपने कमरे में जाने के बाद सोने से पहले मन से यहीं बैठे बैठे मधुबन की यात्रा करनी है, और यह सभी को करनी है, जो यहां रहते हैं उनको भी। कई वर्षों पहले कुछ साइंटिस्ट यहां आए थे शायद, ये जो ट्रैक है शांति स्तंभ से लेकर तो कुटिया तक का, इनको उन्होंने अपने यंत्रों से निरीक्षण किया और उन्होंने कहा था ये जो ट्रैक है इसमें बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस है, तो सबसे पहली पॉइंट समर्थ बाप, समर्थ दिवस पर समर्थ बच्चों को देख रहा है, वो हमको देख रहा है तो हम उसको देखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, उससे दृष्टि लेना है। किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था बाप से दृष्टि लो और सृष्टि को दृष्टि दो, बाप से दृष्टि लो और एक हाथ में सृष्टि उसको दृष्टि दो, इधर से दृष्टि लो और इधर से दृष्टि दो। पवित्रता का अकाल पड़ा है सृष्टि पर, विकारों के अंबार लगे हैं सृष्टि पर, दुखों में डूबती जा रही है ये सृष्टि, विकर्मों का सैलाब आया है सृष्टि पर। भगवान से दृष्टि लेना और इस सृष्टि को दृष्टि देना। आज की मुरली में है वरदान में 10-10 मिनट भी सेवा करो, बीमार हो तो भी सेवा कर सकते हो, सुखमय स्थिति से सेवा करो, पर सेवा करो। पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा एक वरदान अर्पित कर रहे हैं, कौन सा वो वरदान है? समर्थ भव। आत्मा निर्बल बन गई है इसलिए उसमें विकार बार बार आते रहते हैं, आत्मा इतनी शक्तिहीन बन गई है विकारों का आकर्षण है, विकारों में सुख महसूस होता है क्योंकि आत्मा की ऊर्जा शक्ति कम हुई है, इसलिए अमृत वेला उठते ही आंख खुली है, अभी बाबा के कमरे में भी नहीं गए, अभी ट्रांसलाइट के सामने भी नहीं गए, आंख खुली और एक हाथ अदृश्य आया और जिसने मेरे सिर पर वो हाथ आ गया और भगवान कह रहा है समर्थ भव। ये तीसरा अभ्यास है, पहला हैंडशेक, दूसरा मधुबन की यात्रा और तीसरा समर्थ भव। भगवान ने ही हाथ रख दिया है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो शक्ति का सागर है, जो बल का सागर है, जिसके लिए असंभव कुछ भी नहीं, जो अमावस को कर दे पूनम, उसने हाथ रख दिया। ये दूसरी बात। तीसरी बात, 18 जनवरी का दिन, तीसरी बात, बाप इस दिन क्या करता है? शक्तियों को स्टेज पर लाता है, शक्तियों को प्रत्यक्ष करता है, स्वयं छिप जाता है और शक्तियों को साकार करता है, वो खुद छिपता है और हमें प्रत्यक्ष करता है। पेंसिल मेकर के बारे में कोई नहीं पूछता, पेंसिल की चर्चा है, कौन सी पेंसिल से लिखा, क्या लिखा। पेंसिल मेकर ने पेंसिल को अपनी शिक्षाएं देकर स्वयं को छिपा दिया। याद प्यार में है, अपने कर्मों से बाप के दिव्य कर्मों को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, मुरली के याद प्यार में एक जगह है, अपने कर्मों से श्रेष्ठ कर्मों से बाप के दिव्य कर्मों को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, अपनी जीवन कहानी से ब्रह्मा बाप की दिव्य जीवन कहानी स्पष्ट करने वाली आत्माओं को, तो भगवान ने हमें प्रत्यक्ष किया, हमें स्टेज पर रखा है। इसके लिए हम अगर स्टेज पर है तो हमारी हर एक्शन, हर शब्द, हर बोल, हर कर्म, हर चलन, हर मुस्कान, हर कल्पना, स्मृति, स्वप्न, सब कुछ बहुत ऊंचा हो, क्योंकि भगवान ने स्टेज पर रखा है। यदि हम रोते हुए हैं, दुखी है, उदास है, अपने ही जीवन के संघर्ष में डूबे हुए हैं, तो संसार की आत्माएं हमसे क्या सीखेगी? हम ही एक दूसरे के लगाव में फंसे हैं, संसार की आत्माएं हमसे क्या सीखेगी? दादी प्रकाशमणि जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है, और वो बात जीवन का थीम बन जाए। दादी ने कहा है, बाप से ज्यादा किसी को भी प्यार मत करना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कोई बाप से ज्यादा मुझे प्यार ना करे, ये उसके साथ जुड़ा हुआ वाक्य है। दूसरा कोई बाप से ज्यादा मुझको प्यार ना करे, यदि करता है तो शायद मैंने उसे अपने में फंसाया है, फिर वो सर्व नहीं हुआ कल का वरदान। ये तीसरा स्टेज पर भगवान ने स्टेज पर रखा है। चौथा, बाबा ने हमें और एक वरदान दिया है, समीप भव का वरदान। तुम मेरे साथ रहो, समीप भव का वरदान। इस वरदान को सारे दिन भर यूज करना है, कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं तेरे आसपास हूं, खुदा आसपास है, मैं जहां जा रहा हूं वहां वो है। ज्ञान में हम दूसरों को सुनाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु उसका सर्वव्यापी होना यह हमारे प्रेम का अनुभव है। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। उन भक्तों की भी ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि हमने ही वो अनुभव किया कि जहां मैं हूं वहां तू है। पर कुछ दिन पहले तो बाबा ने एक बड़ी कड़ी बात बोल दी थी, जिस जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा है उसके ऊपर केस होनी चाहिए, केस कर दूंगा मैं। किसी एक दूसरी साकार मुरली में बाबा ने कहा था, जिस जिसने सर्वव्यापी मुझे कहा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, पर तुमने संगम पर अनुभव ही ऐसे करा है तो हम क्या करें? जहां मैं हूं वहां तू है, जहां जाऊं वहां तू है, जहां जाऊं तेरी छत्र छाया है, तेरा प्रेम साथ साथ चल रहा है। समीप भव, समान भव का वरदान। चौथा, पांचवा, स्नेह। इस दिन हमने अपने नैनों में उसके स्नेह को समा लिया है, भगवान को स्नेह में समाने का ये दिन है। क्या वास्तव में हमने अपनी आंखों में उसको समाया है? और किन आंखों में भगवान बसता है, प्रश्न पूछा है, हम पूछ रहे हैं आपसे, भगवान किन आंखों में बसता है? किसी भी आंखों में बस जाएगा? अरे गहरा नथु खेरा, किन आंखों में भगवान बसता है, जो आंखें पवित्र है, जो सिविलाइज है, जो निर्विकारी आंखें है उनमें भगवान बसता है, जो आंखें निर्दोष दृष्टि है जिसकी, जो किसी को भी दोषी नहीं मानते। किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, यदि मधु समान मीठी स्थिति बनानी है तो किसी की भी निंदा नहीं करो। ये ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा में जो हो रहा है हर एक का पार्ट है। हम किसी की निंदा क्यों करें? यदि तुम किसी की निंदा करोगे तुम्हारी दुगुनी होगी एक दिन। इसलिए भगवान उन आंखों में बसता है जो पवित्र है, भगवान उन आंखों में बसता है जो निर्दोष दृष्टि है, भगवान उन आंखों में बसता है जो किसी के अवगुण नहीं देखते, भगवान उन आंखों में बसता है जो दूसरों की विशेषताओं को देखते, विशेषताओं का बखान करते हैं, गायन करते हैं, भगवान उन आंखों में बसता है जो अतीत माजी को फुल स्टॉप लगा चुकी है, जिन आंखों में घृणा नहीं, जिन आंखों में नफरत नहीं, जिन आंखों में हिंसा नहीं, जो आंखें शिथिल है, जिन आंखों से प्रभु प्रेम बरसता है, जिन आंखों से परमात्मा प्रेम के आंसू बहते हैं, ऐसी आंखों में वो बसता है। क्या हमारी आंखों में वो है? भगवान को हम अपनी आंखें ऑफर करें तो आंखें बैठेगा? पांचवी बात, प्रेम। प्रेम में समाने का यह दिन है। छठा पॉइंट, अविनाशी मिलन का यह दिन है। मधुर स्नेही अविनाशी मिलन का यह दिन है। भगवान से मिलन मनाने का दिन। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे मैं तुझको खोज रहा था जैसे कोई हिरन खोज रहा था, और अब आकर तुम मिले हो। और केवल मिले नहीं हो, आकर हैंडशेक कर दिया, केवल मिले नहीं हो, वरदान दे दिया समान समीप भव का, केवल मिले नहीं हो, अविनाशी मिलन का वरदान दे दिया, ऐसे आकर तुम मिले। अविनाशी मिलन, और ये मिलन हमेशा होता रहे, ऐसा नहीं कि सुबह हुआ शाम को हुआ और सारे दिन वियोगी, निरंतर ही होता रहे, सदा ही होता रहे, हमेशा होता रहे, प्रतिपल होता रहे। उसके बाद सातवां पॉइंट, अमृत वेला। अमृत वेले का क्या दृश्य था 18 जनवरी के दिन? कितनों ने 18 जनवरी मधुबन में आज तक अतीत में मनाई है, पास्ट में कैसा दृश्य होता है? अश्रुधारा, प्रेम की धारा, ठंड, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, अव्यक्त वायुमंडल, 2 बजे से भीड़ लग जाती है, अमृत वेला। बाबा ने कहा मधुर गीत बजते हैं बच्चों के, अमृत वेला महिमा के गीत, अमृत वेला प्रेम की लहर, और बाबा को मोतियों की माला, एक एक मोती पर क्या लिखा है, मीठा बाबा, और ऐसी माला संसार में और किसी को भी नहीं है, केवल मुझे है। कौन कह रहा है? भगवान। ये भगवान का अपना नशा है। सतयुग में भी ऐसी माला नहीं होगी जो माला अब पहनते हैं, परंतु ये 18 जनवरी और अव्यक्त मास भक्ति मार्ग के श्रावण मास की तरह ना हो जाए। अभी ये नहीं खाते, अभी वो नहीं खाते, क्यों? श्रावण, जैसे ही श्रावण पूरा हुआ खलास। 18 जनवरी के दिन 8-8 घंटे की भट्टी, अव्यक्त मास में विशेष पुरुषार्थ, लालच भी तो दे रखा है उसने, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और जिस दिन पूरा हुआ, अभी चलो रूटीन में जो करना है वो करेंगे, बहुत योग कर लिया। 18 जनवरी पूरा हुआ, 19 जनवरी से अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित। अमृत वेला, शक्तिशाली बनाना है जिसमें अनुभव हो, जिसमें प्रेम के आंसू आ जाए। और आंसू हम अपनी इच्छा से नहीं ला सकते, अपने आप आने चाहिए। जब आत्मा भाव विभोर हो जाती है और डूब जाती है प्रेम में तो ये आएंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो झूठे आएंगे। आठवां, बांधे लिया, वियोग के गीत गाती है, प्रभु प्रेम में मगन है ऐसे बच्चों को जो अबांधे लिए है, जो बंधन में है, जिसको पवित्रता का बंधन है, सेंटर जाने का बंधन है, ज्ञान में चलने का बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं, आथत देते हैं कि प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और तुम इस स्वीट होम में आओगे, मधुर मिलन होगा यहाँ। भगवान कह रहा है, अर्थात भगवान को पता है, हमारे हर एक एक बंधन की सूचना उसके पास है। हमारा कोई भी डायलॉग उसके साथ जो है वो यूनिलैटरल नहीं है, एक तरफा नहीं है। हमारे हर कॉन्वर्सेशन में, हर वार्तालाप में वो हिस्सा लेता है या नहीं, या बस एक ही तरफ से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और वो कुछ बोलता ही नहीं, मौन धारण किए हुए, इटर्नल साइलेंस। और परिस्थितियों के समय तो उसका मौन और ही स्ट्रिक्ट हो जाता है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा बोलता है, पर परिस्थिति आती है तब तो एकदम ही चुप हो जाता है। ऐसा तो नहीं, बंधन। और बाबा तो कहते बंधन में जितना याद आता है भगवान, स्वतंत्रता में उतना याद नहीं आता है। वाह बंधन वाह, तड़प है, मिलन की प्यास है। नौवा, प्रत्यक्षता का दृढ़ संकल्प से सफलता का फल खाने वाली आत्मा है। यह दिन क्या है, सफलता का फल खाने का दिन है, दृढ़ संकल्प से सफलता और फल, ये नाम दिया है इस दिन को। दसवां, दूर है पर बाप के दिल के समीप है, इसका ये दिन है। शरीर से बहुत दूर है आत्माएं, परंतु मन से हमेशा मधुबन में है। इसके लिए दिन में एक बार या हो सके तो दो बार, जहां पर भी हम रहते हैं, सेवा केंद्र, घर या और कहीं, मन से मधुबन की यात्रा करनी है। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और फिर कुटिया और फिर आंगन में बैठ जाना है। देखना ब्राह्मण परिवार की रिमझिम को, कैसी आत्माएं आ रही है, कैसी जा रही है, फरिश्ता स्वरूप में, कोई रोक टोक नहीं करेगा। कितना भी दिन रह सकते हो, कोई नहीं बोलेगा। तो समीप रहने का ये दिन है, दूर रहते हुए भी समीप रहने का ये दिन है। और फिर अगली पॉइंट, यहां पर बाबा ने प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता ये बातें की है। जो भी प्रतिज्ञा करते हो उनको क्या करो, उनको क्या करो, अमृत वेला रिवाइज करो। संकल्प करने के बाद अगर रिवाइज न किया जाए तो पूरा नहीं होगा। और कितने हमने संकल्प किए और कितने संकल्प ऐसे ही गिर गए और कितने संकल्प झूठे हो गए, कितनी प्रतिज्ञाएं की कहां चली गई। हमारी प्रतिज्ञा है उस व्यक्ति की प्रतिज्ञा की तरह है, एक नाव जा रही है जिसमें 30 लोग हैं, सभी अमीर है, बहुत धन कमा कर आ रहे हैं, और नाव बस अब पहुंचने ही वाली है तो अचानक तूफान आ गया, भयंकर तूफान, नाव हिलने लगी, पानी नाव के अंदर आने लगा, हवा के झोंके और सब अस्त व्यस्त होने लगा। सभी बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु बचाओ, मेरा जो कुछ है तुम्हारा ही है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने लगे। एक सूफी संत उस नाव में बैठा था, उसने कहा जरा संभाल के प्रतिज्ञाएं करना, ऐसा ना हो कि तूफान थम जाए और किनारा दिख जाए और फिर पछताओ। और अचानक किनारा दिखता है, अचानक तूफान रुक जाता है और सब शांत। पर एक व्यक्ति जो सबसे धनपति था, सबसे ज्यादा अमीर था, उसकी प्रतिज्ञा सब ने सुन ली और वो फंस गया। उसने कहा था, हे प्रभु मुझे बचा ले, अगर तू मुझे बचा ले तो मेरा जो एक घर है 1 करोड़ का, उसको बेच के जो भी पैसे आएंगे सब गरीबों को दे दूंगा। और ये प्रतिज्ञा सभी ने सुन ली और तूफान रुक गया। अब क्या करे? पर वो भी ऐसे ही थोड़ी छोड़ेगा, उसने भी अच्छी युक्ति लगाई, बहुत जबरदस्त युक्ति, प्रतिज्ञा तो की, वो भी भगवान से, घर बेचने को नोटिस लगाया और उसके साथ एक बिल्ली, बिल्ली की कीमत 1 करोड़, घर की कीमत 10 रुपया। अगर घर खरीदना है तो बिल्ली साथ में खरीदनी पड़ेगी। बिल्ली और घर साथ में बिक गया। कहा था प्रतिज्ञा में, घर बेचकर जो पैसा आया गरीबों में बांट दूंगा, तो घर के 10 रुपए आए और गरीबों में बांट दिए। भगवान को भी ठगा, प्रतिज्ञा तो पूरी की ना। हमने कैसी प्रतिज्ञाएं की? यहां तो बाबा ने प्रत्यक्षता की प्रतिज्ञा, पर हम बात करेंगे कोई भी प्रतिज्ञा को यदि साकार करना है, किसी भी प्रॉमिस, किसी भी ओथ, किसी भी संकल्प को, किसी भी वचन को, तो क्या करना चाहिए? उसकी कुछ विधियां है। सबसे पहला एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो कि मेरे से गलती हो गई या मुझ में यह आदत है जो मुझे छोड़नी है, यह एडिक्शन है, वो मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यह आदत मुझ में है, स्वीकार। दूसरा रियलाइज कि हाँ इस आदत ने मेरी कितना मेरा नुकसान किया है, इस व्यक्ति के साथ संबंध जो मैंने जोड़ के रखा है वो ज्ञान के मार्ग में अनैतिक है, अलौकिक नहीं है, लौकिक है, आत्मिक नहीं दैहिक है। इस संबंध ने मुझे बहुत दुख दिया, अब इस संबंध को मुझे दूर जाना है इससे। रियलाइज, सेकंड स्टेप रियलाइजेशन, पहले तो स्वीकारो हाँ हम फंस चुके हैं। जैसे मुरलियों में आता है, दुनिया वालों को कहो तुम पतित है तो मानते नहीं है, कभी गुस्सा करते, पर पहले माने तब पावन बनने का मार्ग ढूंढे, पहले मान ले कि हमारी दुर्गति हुई है तब सदगति का मार्ग दिखे। जब हम ये मानेंगे कि मैं फंस चुका हूं किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी वैभव में, किसी स्थान में, किसी संस्कार में, कोई पुरानी दर्दनाक याद में, तो मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा। पहला स्वीकार, दूसरा रियलाइज, मनन करो निगेटिव बातों का, क्या नुकसान हुआ इस आदत से। तीसरा संकल्प प्रतिज्ञा, और चौथा जो आज की मुरली में आया उसको रिवाइज करना अमृत वेला। छठवा विजुलाइज, उसको देखना कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बन रहा हूं जो इस आदत से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति बन रहा हूं जो इस पश्चाताप के भाव से, इस आत्मग्लानी से, अपराध भाव से, गिल्ट कॉन्शियसनेस से, रिपेंटेंस से मुक्त हूं। विजुलाइज, उसके बाद अफर्मेशंस, वाक्य बोलते रहना अंदर ही अंदर, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, यह आदत मेरे सामने बहुत ही छोटी है, मैं शक्तिशाली हूं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, 3 दिन का प्लान सफल हो गए, फिर 7 दिन का प्लान सफल हो गए, 21 दिन का प्लान। अमृत वेला, कभी 4 बजे, कभी 4:15, कभी 4:15, कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, कभी 2 मधुबन में आने के बाद, अस्थिर है, टाइमिंग ही फिक्स नहीं है। अब उसको फिक्स करना है, संकल्प प्रतिज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट इज रिव्यू, 7 दिन के बाद 3 दिन के बाद देखना कि 3 दिन कैसे रहे, वो प्रतिज्ञा का पालन किया या कहीं गिरा, यदि गिरा तो क्यों, कौन से कारण थे, कौन से ट्रिगर थे, कौन सी वो बातें थी जो आई और जिसने ब्रह्मचर्य को खंडित कर दिया। और क्यों वो सारे सेंशुअल कामुक ट्रिगर्स को ही नष्ट कर देना। इंग्लिश में कहावत है आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये वस्तु है जो मुझे किसी की याद दिलाती है, वस्तु को ही हटा दो ताकि वो व्यक्ति की भी याद ना आए, स्थूल पर भी काम करना है। ऐसे ही चित्र देखे कि जिससे कुछ विकारी संकल्प आए, वस्तुओं को ही हटा दो, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। कोई व्यक्ति है शुगर है और सामने ही टेबल पर ही चॉकलेट रखे है, रोज ऑफिस में जाता है, सबसे पहली दृष्टि उसी के ऊपर पड़ती है, आदत है खाने की, वो अच्छा लगता है, लंबे समय की आदत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी एक सभा में स्वीकार किया था कि रोज रात को भोजन करने के बाद मुझे मीठा चाहिए, अब बताओ क्या करूं, कोई ये आदत को छुड़ाने में मेरी मदद करे तो करे, ऐसा कहा था। तो ये सारी स्टेप्स है, एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, प्रॉमिस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, अफर्मेशन अर्थात रिपीट करना, बार 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 उस वाक्य को रिपीट करना, मन ही मन एकांत में अमृत वेला रिवाइज करना प्रतिज्ञा को, और फिर इंप्लीमेंट, प्लान बनाना। कोई एक ऐसे ही नहीं होगा, प्लानिंग लगता है, यदि जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा रात के सारे डिजिटल आकर्षण का, रात के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते, दिन में थोड़े कम रहते हैं, हम भी मसरूफ और अपने कामों में, रात के समय आहा सारा कुछ हो गया, मुरली सुन के हो गया, अमृत वेला हो गया, दिन भर सेवाएं होगी, जॉब हो गया, ट्रेवल हो गया, अभी कुछ एंटरटेनमेंट, और मायावी नगरी का एंटरटेनमेंट विकार के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो 11वीं बात प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता रिवाइज करो। और बाबा ने यह भी कहा कि दिनचर्या में टाइम निकालो और स्वयं की चेकिंग करो। उसके बाद में 12वीं पॉइंट हैंडशेक, राइट हैंड जो बच्चे हैं बाबा उनके साथ क्या करते हैं, हैंडशेक, कितना जोर से हैंडशेक करना है, हल्का फुल्का कस के, उसको दर्द ना हो। एक बात हम हमेशा बताते हैं, श्री रामायण में दिखाते हैं राम जी बैठे हैं केवट की नाव में, सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, और वो केवट यहाँ घुमाता है, वहां घुमाता है, यहाँ करता है, वहां करता है, राम जी कहते हैं केवट ये क्या कर रहे हो, हमको डर लग रहा है। केवट बड़ा चतुर है, साधारण भगत नहीं है, वो बहुत चतुर है। वो कहते हैं अच्छा प्रभु, यदि आपको भय लगता है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो ना, उसे पता है आत्मा यदि परमात्मा का हाथ पकड़े तो कोई भरोसा नहीं आत्मा का, यदि परमात्मा आत्मा का हाथ पकड़ ले तो ये नैया पार। वो कहता है राम जी आप ही मेरा हाथ पकड़ लो, अगर आपको इतना डर लगता है तो नदियां पार होते हैं। राम जी कहते उतराई भाड़ा कितना हुआ, वो कहता है भाड़ा तो मैं नहीं दूंगा, क्यों तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार कराए हो राम, तुम इस भवसागर के केवट हो, इस जगत के केवट हो, इस जन्म मृत्यु का जो सागर है उसके केवट हो, उसके खिवैया हो, जब तेरे घाट पर हम आएंगे तो फ्री में पार कराना। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एक दृश्य क्रिएट करना है, तूफान है, समुद्र है, नाव में हम बैठे हैं और खिवैया स्वयं भगवान है और हम चल पड़े। 13वीं पॉइंट, बाबा ने कहा तीसरे प्रकार के बच्चे, मुरली में कहीं वर्णन नहीं है ये पहला प्रकार है ये दूसरे प्रकार है, ये तुम पर छोड़ दिया ढूंढते रहो। अचानक लाइन आ गई, तीसरे प्रकार के बच्चे है, शायद पहले है स्नेही और समर्थी, शायद दूसरे है बांधे लिया और तीसरे है ये वो बच्चे है जो मैदान में कभी नहीं आते, जो स्नेह में समाये हुए, स्नेह में डूबे हुए है, कहते हैं बस जो हूं जैसा हूं आपका हूं। ये भी बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है, जिनका कहीं शायद नाम भी नहीं है, जो कहीं वक्ता नहीं है, कहीं स्पीकर नहीं है, पर सच्चा दिल है, प्रेम में डूबे हुई आत्माएं हैं, बेहद प्रेम है प्रभु से, ऐसी आत्माएं हैं। और बाबा उनको कहते हैं कि ऐसे जो बच्चे वो भी राज्य भाग के अधिकारी होंगे, पर उसके लिए उनको और एक चीज करनी पड़ेगी, प्रेम के साथ साथ क्या होना चाहिए, पढ़ाई, ज्ञान, सेवा, ये दो बातें हैं, इस पर भी अटेंशन। और हमारी पढ़ाई है रोज की मुरली, सुबह जो मुरली चलती है, दिन भर उसका चिंतन, दिन भर उसका मनन, ऐसा मनन कि वो छप जाए हमेशा के लिए। सिंसियर स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट की ये निशानी है कि उसे पढ़ाई से बहुत प्यार होता है, योग से भी प्यार, पढ़ाई से भी प्यार, जो जो बात उसने सिखाई उन सभी बातों से प्यार, क्योंकि सारी शिक्षाएं मुरलियों में आती है, मुरली ही बताती है। वो पेंसिल मेकर ने ही बताया उस पेंसिल को कि तुमको छीला जाएगा, अगर बताया नहीं होता तो शायद उसे दुख होता, पर पहले ही बता दिया कि जब जब तुम्हें छीला जाएगा दुख ना करना, तुम्हारे द्वारा कल्याण होना है। तो 13वीं ये बच्चे, उसके बाद में 4थे बच्चे बहुत ज्यादा चतुर है, बाबा ने कहा ये स्वीट बच्चे है। बाबा हमसे कहते हैं बच्चों प्रतिज्ञा करो, बच्चे बाप से कहते हैं आप प्रॉमिस करो, बहुत ज्यादा चतुर है। बाबा से क्या कहते हैं आप प्रॉमिस करो, और बाप उनको क्या कहते हैं खुश रहो, आबाद रहो, बढ़ते रहो। ये उत्तर है भगवान का कि सदा ही खुश रहो, सदा ही आबाद रहो, बर्बाद ना हो, विकारों ने तुमको बर्बाद कर दिया है। तो ऐसी ये 14 बातें हैं, मुरली यहां पूरी होती है। फिर उसके बाद में दादी जान की दादी बाबा के सामने बैठे हैं, पंद्रहवीं बात, तीन प्रकार की एडवांस पार्टी के बच्चे, एक वो जो प्लानिंग बुद्धि है, दूसरे वो जो करने वाले, और तीसरे ना प्लान करते हैं ना करते उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, ऐसे ये तीन प्रकार के बच्चे हैं। तीनों ही काम करने हैं हमको यहां पर, ये तो एडवांस पार्टी के लिए कहा, परंतु प्लान भी करनी है, करना भी है, और उमंग उत्साह भी बढ़ाना है, जो दूसरे कर रहे हैं, दूसरे जो कर रहे हैं उनका भी उमंग उत्साह बढ़ाना है। उसके बाद में अगली पॉइंट, प्रत्यक्षता के विशेषता के बादल जो है वो छिपे हैं। बाबा ने कहा कौन सी स्थिति में स्थित हो जाओ, शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य, इस स्थिति में स्थित हो जाओ तो सारे बादल बिखर जाएंगे, छट जाएंगे बादल। तो ये भी एक दूसरा समान और अभ्यास दिया है मुरली में, मैं शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरी किरणें सर्वत्र फैल रही है, मेरी किरणें विकीर्ण हो रही है संसार में, संसार में विकारों के जो कीटाणु, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस सब नष्ट हो रहे हैं। कितना अच्छा संकल्प है, सुपात्र बाबा ने कहा। उसके बाद में ये हो गया 16, 17वां जो डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की बाबा ने, क्या कहा उनको, डबल लाइट, क्या कहा उनको, उड़ती कला, क्या कहा उनको, उमंग उत्साह के पंख। और ऐसी अगर स्थिति रही तो चाहिए तो एक चीज याद रखनी है, कौन सी, मैं निमित्त हूं वो करा रहा है। ऐसी अगर स्थिति रही तो डबल लाइट रहेंगे उमंग उत्साह के पंख रखेंगे और उड़ते रहेंगे। और लास्ट और 18वीं पॉइंट, विदाई के समय जो हमने बोल दी है कि अगर वहां जाकर कुछ भी गड़बड़ होती है तो क्या करो, सीधा बुद्धि रूपी प्लेन में बैठो, स्मृति का स्विच ऑन करो, डबल लाइट पेट्रोल भरो, किसी और दूसरी मूल्य में था, स्मृति का स्विच ऑन करो, बुद्धि रूपी प्लेन में बैठो, डबल लाइट पेट्रोल, एक पेट्रोल मैं आत्मा, दूसरा पेट्रोल परमात्मा की संतान, डबल लाइट पेट्रोल बनो और बाप के पास पहुंच जाओ, मधुबन आ जाओ, इस भूमि में आ जाओ, इसके वाइब्रेशंस का अनुभव करो, यहाँ जो पल अनुभव किए थे, इस भट्टी में यहाँ बैठे बैठे ही जो जो अनुभव हुए, यहाँ से जाने के बाद अनुभव लिखना, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए। लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं, वहां से आते हैं तो मैगजीन में अपना अनुभव पब्लिश करते हैं, हम यहाँ घूमने गए थे, कश्मीर गए, माथेरान गए, यहाँ गए, फला गए, ये हमारा अनुभव है, हमारे अलौकिक अनुभव है। वो सारी चीजें याद करना, जब मधुबन में थे तो अमृत वेला कैसा था, जब वो क्लास चल रही थी तो क्या अनुभव हो रहा था, कुटिया में बैठे थे तो कैसे आंसू बह गए, आंगन में बैठे थे तो कैसी रिमझिम थी, फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार। इन पलों को याद करना है, ये विधि है, नहीं तो उधर की परिस्थितियां कभी कभी कमजोर बना देती है। तो ऐसी 18 बातें फिर से रिवाइज करेंगे शुरू से लास्ट तक। सबसे पहली बात, बात कैसा है, समर्थ। हम कैसे हैं, समर्थ। दिन कैसा है, समर्थ। केवल 18 जनवरी ही दिन समर्थ ना हो, हर दिन हमारे दिन समर्थ हो जीवन का, हर दिन शक्तिशाली हो, उसके लिए दिन की शुरुआत शक्तिशाली होनी चाहिए। अमृत वेला शक्तिशाली तो दिन शक्तिशाली, अमृत वेला ही कमजोर, अमृत वेला ही व्यर्थ, अमृत वेला ही निगेटिव, अमृत वेला ही नींद, अमृत वेला ही मिस, तो सारे दिन भर दुखी, उदास, भिखारी की अवस्था, मांगने की अवस्था, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, पहला। दूसरा, ब्रह्मा के द्वारा कौन सा वरदान अर्पित किया, समर्थ भव का वरदान। उठते ही हाथ रखा है किसी ने और वरदान दे दिया। तीसरा, हम लोग कहाँ हैं, स्टेज पर है, बाबा ने हमको स्टेज पर रखा, शिव शक्तियों को स्टेज पर रखा, खुद छुपा है। पेंसिल को कहा था उसके पेंसिल में करने लिखते जाना, और गलती हो जाए तो उसको मिटाना भी, लिखते जाना, रुकना नहीं, पुरुषार्थ करते जाना, सेवा करते जाना, योग करते जाना, पुतलियां पढ़ते जाना, अध्ययन करते जाना, चिंतन करते जाना, रुकना नहीं। चौथा और एक वरदान, समीप भव का वरदान या समान भव का वरदान। पांचवा, स्नेह में समा जाना, और भगवान किन आंखों में समाता है, जो आंखें बहुत निर्दोष है, बहुत प्योर है, सिविलाइज है, जो शरीर को नहीं देखती, शरीर जिन्हें पसंद नहीं है, शरीर के आकर शरीर में के आकर्षण में ना आए, शरीर जिन आंखों को झांसा ना दे, ऐसी आंखें भगवान को प्रिय है, जो आंखें सिविल हो गई है, जिन आंखों में प्रभु प्रेम भरा है, जिन आंखों में यज्ञ का प्रेम भरा है, जिन आंखों में सेवा का प्रेम भरा है, ऐसी आंखें उसको बहुत प्रिय है। छठवा, अविनाशी मिलन, अविनाशी मिलन का वरदान, ये वरदान बाबा से ले लेना है। रात को सोते समय मुंह में पानी आ जाना चाहिए, आ कल अमृत मिला, कल भगवान से मिलन होने वाला है। डिप्रेशन, आ अशरीरीपन, ये शरीर जो सारे दिन भर पागल कर देता है, सुबह सुबह भूलने वाला है, इसी खुशी में सोना है। सातवा, अमृत वेला, बाबा को माला पहना देना सुबह सुबह, प्रेम के मोतियों की माला। आठवा बांधेलियों के कहा, वियोगी आत्माएं योगी आत्माएं हैं, दिल से वियोगी है, पर बाबा उन्हें कहते हैं धीरज धर, ये बंधन एक दिन टूट जाएंगे। कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं रहती है, और जब जब अंधेरा ज्यादा हो जाएगा समझना अभी प्रभात होने वाली है। नौवा फल, सफलता का फल कब मिलेगा? दृढ़ संकल्प से। दसवा वो दूर है, अगर कोई दूर है फिर भी नजदीक है। ग्यारहवा प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा की कुछ बातें बताई, उन बातों को अपने जो आदतें हैं उनमें अप्लाई करनी है। तीन दिन का पहले संकल्प करना है, सफल हो गया अपने आप को थोड़ी शाबाशी देना और फिर और आगे बढ़ाना उसको, ये बुरी आदत तोड़ने के लिए और नई आदत धारण करने के लिए दोनों में लगाया जा सकता है। और एक आदत जो हर एक को डालनी है वो है मुरली चिंतन, मुरली चिंतन। इसी में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा, माया नहीं आएगी, निगेटिव नहीं आएगा, समय सफल होगा और ज्ञान क्लियर होगा, स्पष्टता बढ़ेगी और बाबा से प्यार भी बढ़ेगा। किसी एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था, एक है बाप को याद करना, एक है बाप के ज्ञान को याद करना। बाप के ज्ञान को याद करने में ज्यादा फायदा है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बाप के ज्ञान को याद करने में ज्यादा फायदा है। उसके बाद अगला तेरा हैंडशेक, बारह हैंडशेक। उसके बाद में अगला एक कैटेगरी है बच्चों की, जो दिन रात प्रेम में डूबे हुए है, वक्ता नहीं है, ग्राउंड में नहीं है, मैदान में नहीं है, तो उनके लिए बाबा ने कहा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। और फिर दूसरे कुछ चतुर सुजान बच्चे हैं जो कहते हैं आप ही हमारे लिए करो, आप ही कुछ ऐसा करो कि आपको हमारी याद ही ना भूले। आप हमें कहते हो निरंतर याद करो, निरंतर याद करो, आप कुछ ऐसा याद करो हमको कि आप हमको भूलो ही नहीं तो हमको अच्छा ही हो जाएगा। ऐसे चतुर बच्चे भी है, बहुत ज्यादा चतुर। हमको कहते हैं 8 घंटा याद करो, आप कितना घंटा याद करते हो हमको? गिनती से परे हो, उसमें जोक है ना, एक व्यक्ति के आगे, वो कंजूस व्यक्ति के पास एक व्यक्ति आता है, भोजन करता है, तो वो उसको एक लड्डू देने जाता है। वो कहता है बस बस बस, 4 लड्डू मैंने पहले खा लिए। कंजूस व्यक्ति कहता है 4 नहीं, तुमने 6 खाए। वैसे गिनती कौन करता है? गिनती से परे। चलो ये तो दूसरी बात थी। अगला एडवांस पार्टी में 3 ग्रुप, प्लानिंग बुद्धि, इंप्लीमेंट करने वाले और हिम्मत बढ़ाना, ये तीनों ही चीज हमको धारण करनी है। अगला मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इसका अभ्यास करना है। इसमें कुछ और बातें भी थी, थोड़ी अलग प्रकार की बातें, पुरुषार्थ से रिलेटेड नहीं है वो। उसके बाद में डबल लाइट स्थिति, उड़ती कला, उमंग उत्साह के पंख और मैं निमित्त हूं। यह अहंकार नहीं कि मैं कुछ करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। संगम युग पर सब कुछ ईश्वरीय शक्तियों से हो रहा है। और लास्ट पॉइंट, मधुबन में आ जाना। ऐसे कैसे कैसे ऐसे डबल लाइट आत्माओं को, ऐसे स्वयं को निमित्त समझने वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ दिवस पर स्वयं को समर्थ बनाने वाली आत्माओं को, अविनाशी मिलन का वरदान प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रेम के मौसु प्रेम के आंसू बहाने वाली आत्माओं को, ऐसे हैंडशेक करने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रतिज्ञा लेने वाली आत्माओं को और प्रतिज्ञा से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, ऐसी जो बंधन में है परंतु भगवान से मिलन मना के बंधनों से मुक्त होने वाली आत्माओं को, ऐसे बहुत मीठी और चतुर आत्माओं को जो बाप को भी कहती है कि तुम हमको याद करो, ऐसे अमृत वेला हाँ तो भी मधुबन में बार बार आने वाली आत्माओं को, चार धामों की यात्रा करने वाली आत्माओं को ऐसी टैश टैश टैश, ढेर सारे समान वाली आत्माओं को पाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।